This is a Suno India production and you're listening to Beyond Charminar.
Hello everyone, welcome to another episode of Beyond Charminar. This is a Suno India production. So for this month's episode, well, I guess we decided to do something that we've been talking about from a very long time. And that is about the controversy about the temple or the Bhagyalakshmi temple on the Charminar. So, you know, in contemporary politics, I'm pretty sure that all of you are aware of that, you know, about the significance of the temple, about, you know, how all politicians go there, etc., etc. And in connection with that, how UP Chief Minister Adityanath one day, I think in the GHMC elections during the campaign, he passed a comment saying that the city should be renamed Bhagyanagar. There's a lot of questions that I keep getting about this temple and the Charminar always, especially when I conduct my heritage walks. And to a large extent, most of the questions that I get are about the origins, when whether it was really there when the Charminar was built or not, and this and that. So I'll first clarify the basic facts. See, for those of you who have not heard any of the previous episodes, I would really request you to do that for context and background. But essentially, the city Hyderabad was founded in the year 1591, and the Charminar is basically the city's foundational monument. It was built to mark the new city of Hyderabad in 1591, and before that, the Golconda Fort used to be a walled city. So 1518 is when the Golconda Kingdom is established. From 1518 up to 1591 is when the fort was a walled city. And when it was not enough, they moved out and they built Hyderabad. Muhammad Quli is Hyderabad's founder. And historical records from the Qutub Shahi or Golconda period show that there was no temple at all. And we have proof of historical archival photos and even photos from after independence, which show that there was no temple even until the 1960s. So just for context, the Golconda period ends in the year 1687 after the Mughals conquer Hyderabad, and then the Nizams come in the year 1724 as the governor of the entire central South Indian or the Hyderabad Deccan state. That is the Nizam history that continues until 1948. So for today's episode, to talk about this Charminar temple, as Bhagyalakshmi temple, is something I thought we should do. And more importantly, I thought it would be important for us to actually talk to somebody who has been going to the Charminar and who has lived in the old city and who has pretty much seen the temple, the genesis of the temple, I guess that would be the right word. So today we are going to talk to Ms. Audesh Rani Bawa, who is also the wife of Dr. V.K. Bawa. V.K. Bawa has written books on Hyderabad, including The Last Nizam, and V.K. Bawa is a former IS officer. Ms. Audesh Rani Bawa is a Urdu and Deccan enthusiast. Her interests are in Urdu in the Deccan, and she's worked in the Salar Jung Museum, and she's very familiar with Hyderabad as well. And she's more familiar with also contemporary and also historical politics of the state and the city as well. Her father was a government servant in the erstwhile Hyderabad state under the last Nizam in the excise department. So, Ms. Audesh Rani Bawa is somebody who has actually seen the temple since her childhood, and she will be able to give us a much clearer picture of what the temple was before people like me and people around my age, around 30s or 20s, in the 20s, 30s, have seen it. We've only seen the bigger temple, but a lot of elders have seen the temple coming up. So let's talk to Ms. Audesh Rani Bawa. Thank you for joining Beyond Charminar. And FYI, this episode will be in Hyderabad, your Dakhni, so I hope you all enjoy this episode even more.
Sir, आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए, आप कहाँ पैदाइशी हुए, आपके फादर के बारे में और आपके भाई के बारे में थोड़ा बता दीजिए।
मेरे जो दादा हैं वो आजमगढ़ से हैदराबाद तशरीफ लाए थे, इसलिए कि उनकी शादी हो जाए यहाँ पर, तो वो अपने भाइयों के साथ आए, दो भाई उनके यहीं रहे। उनके जो साले थे उसमें आपके पैगाम में मुलाजिम थे और उनका इंतकाल हुआ तो ये हमारे दादा को नौकरी दे दी। आपको एक बात मैं बता दूँ, कायस्थों में 100% एजुकेशन होता है। अरबी, फारसी, उर्दू, इंग्लिश पढ़ना जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, अभी भी यही रहता है। और औरतों के लिए हिंदी भी पढ़ना होता है, तो अरबी नहीं पढ़े तो हिंदी तो जरूर रहता, हिंदी और फारसी पढ़ना औरतों के लिए जरूरी होता। क्यों बोलेंगे आप, बच्चे को पढ़ाना पड़ता उसको। अगर औरत पढ़ी लिखी रहेगी तो नस्ल पढ़ी लिखी रहेगी इस हिसाब से। तो वो दादा को भी आती थी फारसी वारसी आती थी और यहाँ हैदराबाद में वो पाइगा में नौकर हो गए और उसमें वो अरबों के सरिश्तेदार कहलाते थे। तो उसके बाद दादा के,
आपके दादा का नाम
हरिप्रसाद था, हरिप्रसाद था, वो अरबों के सरिश्तेदार थे मुसल्लम जंग के पाइगा में। उसके बाद ये हो गया कि मेरे बड़े भाई साहब आ गए दुनिया में, उनके दो बेटे थे, एक महबूब राय और एक महबूब नारायण। महबूब राय, अच्छा आप पूछिए दोनों का एक ही नाम क्यों रखे, तो दादा को जो है किसी ने बताया कि आप हिंदू नाम मत रखिए, महबूब सुभानी का नाम रखिए तो आपके बच्चे बचेंगे। उनके दो चार बच्चे शायद मर गए थे, कुछ हो गया, तो फिर वो जाकर जो है उन्होंने गौलीपुरे का जो दरवाज़ा था फसील का, उसके ऊपर महबूब सुभानी का झंडा कायम किया और अपने बच्चों का नाम महबूब रखा। तो अब एक ही नाम, तो एक का नाम महबूब नारायण रखा, एक का नाम महबूब राय रखा। महबूब राय के जो लड़के हैं वो डॉक्टर राजबहादुर गौड़ है और वो मेरे वाले, उनकी वालदा का बहुत कम उम्र में इंतकाल हो गया, वो मुश्किल से 2.5 साल के थे। उसके बाद उनकी तरबियत मेरे वालिद ने की उनकी और उनको डॉक्टर बनाया। जब डॉक्टर का इम्तिहान दिया तो वो सीधा कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। तो
जब उन्होंने राजबहादुर गौड़ साहब जब उस्मानिया में पढ़ रहे थे ना,
उस्मानिया यूनिवर्सिटी का 3rd या 4th बैच ऑफ मेडिसिन था उनका।
अच्छा, ये तो राजबहादुर गौड़ साहब का हो गया। और आपके वालिद साहब?
मेरे वालिद साहब जो है वो पहले स्कूल में टीचर ही करते थे, उसके बाद उन्होंने आम तौर से हैदराबाद में कायस्थों को एक्साइज यानी शराबबंदी का, नशाबंदी ये सब के मुलाजिमतें वो कायस्थों को दी जाती थी, क्योंकि कायस्थ जो है शराब बनाने के माहिर थे हैदराबाद के।
ऐसा कायको
वो नहीं मालूम, कायको नहीं मालूम, मगर ये है कि आपको सुनेंगे आप महाराज ये शिवराज बहादुर की जो देवड़ी है वहाँ पर, इट इज़ ए टाइप ऑफ ए स्टेटस, आपका मेयार ज़िंदगी मालूम होता था कि जब आपके पास कितने शराब बनाने का परमिट है। तो सबसे ज़्यादा परमिट जो है शिवराज बहादुर को था, मालवाला पैलेस वालों को, वो सबसे बड़ी ज़्यादा थे, वो हर किस्म की शराब बनाते थे, गुलाब की शराब बनाते थे, मोतिया की शराब बनाते थे।
लेकिन अब सवाल ये उठता कि उसमें पीने वाले कौन थे?
पीने वाले कायस्थ थे, हम तो शराब के बगैर काम नहीं होता था हमारा, वो देवी के पास जाके पहले शराब भी पिलाते थे बच्चे को, यानी आप दूध चटाई या दूध छुटाई का जो रस्म होती है वो हमारे पास शराब से होती है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई वो नहीं रहता, पहले उसको शराब का चटाया जाता है, फिर उसके बाद एक कबाब उसके मुँह से चटाया जाता है। तो मतलब शराब और कबाब हमारे मुकद्दस चीज़ों में से एक है, पॉसिबली एंटी ब्राह्मणिज्म का होगा, मैं ठीक से जानती नहीं हूँ, लेकिन ये होगा। उसके बाद ये यहाँ मेरे वालिद एक्साइज में आ गए, राजबहादुर गौड़ साहब अंडरग्राउंड हो गए।
वो तो पुलिस एक्शन के वक्त?
नहीं,
उससे पहले
46 से ही जो है पार्टी पे बैन आ गया था। हाँ। तो वो चले गए और उसके बाद मेरे वालिद भी जो है बाहर चले गए।
आपके वालिद साहब पुलिस एक्शन के टाइम पे क्या कर रहे थे?
पुलिस एक्शन के टाइम पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी आ गए थे हमारे वालिद साहब।
वहाँ पर मतलब?
वहाँ पर सुपरिंटेंडेंट एग्रीकल्चरल कॉलेज थे।
अच्छा, ओके ओके। अब चलो ठीक है, पुलिस एक्शन तो ठीक है, आप कब पैदा हुए?
मैं 1941 में पैदा हुई। 46 तक मैं जो है जालना, उस्मानाबाद, औरंगाबाद इधर घूमते रहे।
वालिद साहब के काम की वजह से?
वालिद साहब के काम की वजह से, क्योंकि वो मराठवाड़ा के एक्साइज सुपरिंटेंडेंट।
तो पुलिस एक्शन से पहले बोल तो आप 7 साल के थे पुलिस एक्शन के टाइम पे, 41 मतलब। कुछ याद है आपको पुलिस एक्शन के बारे में?
बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगी, पुलिस एक्शन बहुत अच्छी तरह से याद है। उसके बाद में जो है हम लोग हैदराबाद आ गए, क्योंकि अच्छा हैदराबाद की एक और एक अजीब सी बात थी, आपको शायद नहीं मालूम, हैदराबाद से किसी को भी ट्रांसफर कर दिया तो बहुत परेशानी होती थी उसको।
कहीं कोई सा?
वो बोलता था हैदराबाद से सिंगारंडी गए तो रोता था। आज आप सोच रहे हैं लोग वरंगल में काम करते हैं, यहाँ हैदराबाद आते हैं, हैदराबाद में काम करते हैं वरंगल तक जाते हैं। तो वो पता नहीं, वो हैदराबादी की आदत ये थी कि हैदराबाद शहर बल्दिया से बाहर नहीं जाना,
मतलब शहर के बाहर गए तो खत्म।
शहर के बाहर गए तो बहुत बुरा आदमी है, उसको खाने को गत नहीं है, इसलिए चला जाता है, ये आम ख्याल होता था। तो मेरे वालिद को भी जब भेजा गया तो काफी लोगों को एतराज हुआ था कि ये जाके महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ से कई को गए बोल गए।
हाँ, वो मराठवाड़े का, महाराष्ट्र नहीं था, मराठवाड़ा में। नहीं, यहाँ भी कर सकते थे ना भाई, छोटी नौकरी कर लो, लेकिन यहाँ वहाँ नौकरी तरक्की मिले तो या तो तरक्की दे के भेजते थे या तो तनजुली पे भेजते थे।
अभी आप जब इतने छोटे थे, आपको 40 पुलिस एक्शन के बाद या 47, 48, 49 के टाइम पे आप जब कभी बचपन में कभी चार मीनार गए?
बहुत बार।
क्या था जब चार मीनार के पास?
कुछ भी नहीं था। चार मीनार पे एक बहुत मोटी सी चेन लगी हुई थी, इतनी मोटी थी, और उसमें एक फुव्वारा घूमता था और आप चार मीनार के अंदर नहीं जा सकते थे। इस चार मीनार पे सीढ़ियाँ नहीं थी और चारों तीनों तरफ सीढ़ियाँ थी, और सबसे बड़े औरतों के और बच्चों के वास्ते सबसे बड़ा दिलचस्पी का मशगला जो है लाड़ बाजार था। वो आज भी है।
तो आप बोल रहे कि चार मीनार के चारों तरफ एक मोटी चेन थी, लेकिन और तो फिर ये क्या बोलते, चार मीनार का जो अभी फिलहाल जो मंदिर है, मंदिर से पहले क्या था, वो पत्थर क्या था, कौन था, जरा एक बार थोड़ा आपके क्या याद है आपको जरा बताइए ना।
हाँ, नहीं, वो तो 67 में हुआ है ये पत्थर जो टूटा है।
उससे पहले
कुछ नहीं था, वो चेन थी, चेन और फुव्वारा चलता था उसके अंदर, और आराम से लोग जाके कभी कभी बैठ जाते थे, कुछ लोग पैसे दे के जाते थे।
वो एक बच्चे, एक औरत वहां पर जो बच्चे पत्थर डाल के बैठ गए, वो एक बार जरा कहानी लोगों को बताइए क्या है एग्जैक्टली।
ये हुआ था, सीमेंट रोड बनाई गई जब
30s में
सीमेंट रोड बनाई गई, और वो सीमेंट रोड जब बनाते वक्त पर वहां पर एक बेगार लाया जाता था, उसको 80 बोलते थे, यानी उनको सिर्फ खाना दिया जाता था और कोई पुराने कपड़े दे दिए तो दे दिए, अगर इत्तेफाक से कोई मर जाता तो वही गड़ा खोद के उसको गाड़ दिया जाता था। तो ऐसे ही एक औरत काम करती थी जिसकी एक छोटी 2-3 साल की बच्ची थी, जो औरत मर गई तो वो बच्ची को वो पत्थर के पास बिठा दिया, क्योंकि चेन रहती थी ना, तो चेन से उतर के इधर उधर ना भागे वो बच्ची, वहाँ बिठा दिए। बिठाने के बाद में चूंकि वो औरत के वो रखे थे वहाँ दफन थी, तो लोग जो है कुछ हल्दी कुंकुम उस पर डाल दिए, होते 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 वो हल्दी कुंकुम बढ़ते गया और लोग जो है उस औरत को खैरात देने लगे। जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, मतलब 15-16 साल की होगी, तो कहीं शादी वादी कर ली क्या है, लेकिन वो गोलीपुरे में मछली बेचा करती थी, मछली और सब्जियां, गोलीपुरे में बहुत बड़ी मार्केट थी, वो मार्केट में वो सब्जियां बेचा करती थी, और अपना 4-5 बजे के करीब जाके वहां बैठ के वो वसूली भी कर लेती,
जो भी आमदनी आया था
वो भी आमदनी ले लेती थी। उसके बाद वो 67 में वो टक्कर हुई।
यहाँ ये टक्कर असल में 67 में टक्कर जब हुई, क्या हुआ था असल में, कौन क्या मारा था?
कोई वो नहीं था, वो शायद कंडक्टर ने बस चलानी शुरू कर दी थी, वो खाबों में नहीं रख सका, वो जाके वो जो माइलेज का पत्थर था वो टूट गया।
माइलेज का पत्थर क्या है जरा लोगों को समझा सकते?
माइलेज का पत्थर बोलो तो एक, जब वो चेन बंधी हुई थी ना, वो चेन वो पत्थरों के साथ बंधी हुई थी पूरी चेन, वो चेन के ऊपर जिस ये जो पत्थर था वहाँ एक हैदराबाद बोल के लिखा था, उस पे 0
कितना बड़ा था, एक ये हाइट में ये पत्थर,
ये हाइट में पत्थर 4-5 फुट का, 4 फुट। हाँ, तो मगर वो टूट गया जब बस का टक्कर लगाए, टूट गया। टूटते ही वहाँ लोगों ने उसके ऊपर मंदिर बना लिया, क्योंकि वो हल्दी कोको वहाँ था। और उसके
बनाए कौन ये?
अब ये तो कहते हैं कि वो मगनचंद बेदी वगैरह थे, आर्य समाज के कुछ लोग, उन्होंने कहा कि ये मंदिर है वो, बहरहाल वो उसके बाद वो औरत को निकाल दिया वहां से, जिसके ऊपर वो मंदिर बना था, वो औरत वहां से चली गई, वो कोई 2 और पंडित आगे बैठ गए, लेकिन वो पंडित शमसामुद्दीन के मुलाजिमीन थे, शमसामुद्दीन साहब जिनके घर में आप देखे होंगे अकन्ना मादन्ना का जो टेंपल बना है, उनकी बहुत बड़ी देवड़ी थी, उस देवड़ी पर वो मंदिर के लोग थे नौकर। अब वो देवड़ियां वोड़ियां खत्म हो गए थे सब, अपना रोजगार देखने के, तो यहाँ इन्होंने रोजगार लगा लिया, वहाँ टेलीफोन भी लग गए, और उसके बाद ये जो आपके चार मीनार ईस्ट पर जो नशाबंदी की दुकानें थी वो भी खत्म हो गई, तो फिर नशाबंदी यहाँ आ गई, यहाँ पर वो टेलीफोन वाले वो करने लगे। ये बात सबको मालूम थी, लेकिन कुछ नहीं होता था, ना पुलिस कुछ करती थी। अब जब वो लगाए उसके बाद वो ASI वाले गए, कोर्ट को गए, जब कोर्ट को गए तो वहाँ एक इंस्पेक्टर साहब थे, मैं नाम सही बोल रही हूँ मुझे याद नहीं है, लेकिन वो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि साहब जब तक केस नहीं आएगा मैं यहाँ मूर्ति नहीं बिठाने दूंगा। तो वो मूर्ति कई साल तक पुलिस स्टेशन में थी, पुलिस स्टेशन से उसने बाहर नहीं आने दिया। फिर उसके बाद ये केस जीतते ही उसने वो मूर्ति ले जाने, तो उसका ट्रांसफर हो गया।
केस कौन जीते? एएसआई वाले।
एएसआई वाले।
फिर मूर्ति अंदर गया कैसा? फिर
मूर्ति तो लाए थे ये बिठाने को, तो पुलिस वाला लेके जाके अंदर रख लिया।
फिर लेकिन अब मंदिर में गया कब फिर वो?
ये इसके बाद ही गया, उसको हटा दिया ना वो जो इंस्पेक्टर था, वो हटा दिया, उसको भेज दिया। आपको मालूम है मिलन साहब को भी भेज दिया यहाँ से।
लेकिन मूर्ति अंदर कब बिठा और ये मंदिर बड़ा कब बना? फिर
ये मंदिर बना फिर 80 के आसपास में।
हल्लू हल्लू
हल्लू हल्लू बनते गया, मूर्ति भी आ गई। उसके बाद शहर में हल्के हल्के फिसाद होने लगे। फिर होते 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 वो फिसाद भी बढ़ गए। 92 का फिसाद तो आपको याद होगा,
बचा था लेकिन बोलते
92 का फिसाद ये था कि बाजू वाले को भी आप नहीं पहचान सकते थे कि क्या हो रहा है। इत्तेफाक की बात थी, मैं उस वक्त दिल्ली में पढ़ाती थी तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ ना कुछ इतना हुआ होगा। तो
अच्छा, अभी आपके अब 41 में पैदा हुए, मतलब 1960s में आपके 25 साल के थे।
हाँ, बिल्कुल।
और उसके बाद फिर 80s, मतलब आपको क्या याद है वो वक्त से? आप क्या देखे जब चारमीनार के पास में? आपका जब जाते थे आप क्या देखते थे मंदिर में? जब क्या याद है आपको?
अब मंदिर में क्या याद है? अब गुंडागर्दी का वो मुजाहरा होता था। अब देखिए 12 बजे से 3 बजे तक पूजा करना मना है हिंदुइज्म में। और जब मंदिर बनाते हैं तो उस मंदिर के नीचे जो है सोना चांदी 5 चीजें रखते हैं, मोती हीरे सोना चांदी रखते हैं। रख के उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, यानी उस मूर्ति में जान डाली जाती है। वो तो कुछ हुआ नहीं वहां पर, वो मूर्ति रख दिए और बस शुरू हो गया अपना पीना खाना सभी शुरू कर दिए। उसके बाद अब वो 12 से 3 तक जब पूजा नहीं होती है आपकी, आप मंदिर में जा नहीं सकते हैं, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
लेकिन
यहाँ पर जो है वो घंटा बजाना शुरू कर देता है।
कब? क्या?
एक बजे जबकि इधर जोहर की नमाज हो तो इन्होंने घंटा बजाते हैं। ये लगता है कि चलो हम आपको तंग करते हैं।
लेकिन जब के टाइम पे जब वो मंदिर बनाए, आसपास के लोग कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करे? जब
करे बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। देखिए ये हैदराबाद जो था ना, इसमें एक खास बात थी, इसके लोग जो है एक दूसरे का बहुत एहतराम करते थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारे घरों में अगर अजा होती थी तो हमसे कहा जाता है सर पे पल्लो उड़ाओ। और जब मस्जिद के सामने से कोई मैयत जा रही हो जो बाजा बजाती हो तो कम से कम 40 कदम वो रोक लेते थे बाजे को, और 40 कदम आगे जाके फिर बाजा बजा लेते थे। यानी 80 कदम का फासला ऐसा होता था मस्जिद से कि वहाँ के मुसल्लियों को कोई वो ना हो, क्योंकि लोग मस्जिद में बैठ के वजीफे भी पढ़ते हैं। हर मस्जिद के साथ ये एहतराम हिंदू करते थे, और कोई ऑर्डर नहीं था गवर्नमेंट का। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो ये है कि हम तंग करो, आप किसी को तंग करके खुश हो जाओ। यानी ये जिसको क्या बोलते हैं सैडिस्ट साइकोलॉजी हमारी हो गई, सैडिस्ट साइकोलॉजी हो गई है। तो वो नहीं था हमारे पास, हैदराबाद में नहीं था ये, काफी लोगों ने किया। अच्छा, ये मुर्दे का तमाम फैसला, यानी जो औरत मरी वहां पर उसको गाड़ दिया गया, इसके डॉक्यूमेंट्स लेके जाके मिनिस्टरों को दिया गया, केएल महिंद्रा साहब ने दिया, लेकिन उसका कोई नहीं हुआ। और उल्टा हम पे इल्जाम ये लगाया गया कि भाई कम्युनिस्टों को आस्था नहीं है। हमको बहुत आस्था है, हम रिलीजन को बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। और कभी कोई कहता है, मुझसे कोई कहता है कि साहब आप मुसलमान हो जाओ, तो मैं कहती हूँ कि हजरत ने हजरत अली से नहीं कहा था कि तुम मुसलमान हो जाओ, वो खुद अपने तौर पर आए थे कि मैं मुसलमान होता हूँ। और वो सिर्फ 10 साल के बच्चे थे, सबसे छोटी उम्र का मुसलमान थे वो। और आपने हजरत ने ये फरमाया था कि आप अपने बुजुर्गों से इजाज़त ले लिए, तब उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपना खुद फैसला करता हूँ। तो आ हजरत ने ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, हालांकि वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने हजरत अली को भी नहीं कहा था। तो किसी गैर को कैसे बोलेंगे वो मुसलमान हो जाओ? आजकल तो हर शख्स बोलता मुसलमान हो जाना चाहिए, ये इन्होंने बोलता हिंदू हो जाना चाहिए, ना हिंदू मालूम ना तुम्हारे को मुसलमान मालूम। हाँ, बहरहाल दोनों तरफ है, मैं ये नहीं बोलती कि इन्हों गलत कर रहे हैं उन्हों गलत कर रहे हैं। दोनों को अपने मजहब में जो इंसानियत है वो भूल गए, और ये मजहब नहीं है।
तो दूसरा बात ये भी उठता कि जब वो मंदिर जब बनाए
जी,
उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुआ क्या? जब
हुई छोटी मोटी गड़बड़ हुई, लोग आपस में लाठी चार्ज वार्ज कर लिए, पुलिस वाले मार के इनको बढ़ा दिए उनको बढ़ा दिए, किस्सा खत्म हो गया। वो कोई
कुछ मेजर नहीं हुआ,
मेजर नहीं हुआ।
लेकिन अब जो है, अब ये तो ऐसा एक बड़ा इम्पोर्टेंट मंदिर बन गया, जहाँ पर हर जिस कोई बीजेपी का रहो या TRS का रहो, हर जना वहाँ पर जाके सब चीज वहीं शुरू कर रहे हैं आजकल। तो अब क्या हो सकता है उसका?
अरे साहब, मुझे तो दिल्ली में एक साहिबा ने फरमाया कि वह मन्नत मांगे तो पूरी होती। उनको क्या मालूम, मैं बोली मन्नत मांगे तो मुर्दे पे मन्नत कौन मांगता है हिंदू, मेरे को ये बताइए। अरे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, आपको मालूम नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो मोहतरमा मुझसे कई दिन तक नाराज रही।
आप क्या किया पुलिस, मतलब सॉरी, आप कॉलेज कहाँ पढ़े, उसके बाद क्या करे? फिर
उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहाँ उस्मानिया से MA करी उर्दू में। मगर जब मैं BA कर रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे जो असातजा थे वो एक तरफ तो बहुत आला दर्जे के असातजा थे, और लेकिन दूसरी तरफ दो हजरात थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, दोनों, एक हिंदू था एक मुसलमान था, दोनों आपस में चोर चोर सौतेले भाई बोलते ना, वैसा उनका हिसाब था। और उन्होंने बहुत बड़ा फिसाद कराया था हमारी उस्मानिया यूनिवर्सिटी।
ये कब की बात है?
ये है 62-63 एकेडमिक ईयर।
अच्छा, फिर
कराया। उसके बाद में उन्होंने कोशिश की, बहुत कोशिश की कि फिसाद करवाए, फिसाद हुआ। 15 दिन तक यूनिवर्सिटी बंद हुई, क्योंकि मैं उस फिसाद की आई विटनेस थी, जिसमें मैं ये बोल सकती थी कि साहब ये हजरात थे तो मुझे भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। 11 स्टूडेंट्स को निकाला गया था, जिसमें मैं तन्हा औरत थी। अब आपके मुंसिफ के जो एडिटर साहब हैं, उनके ऊपर दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाकर उनको निकाला गया, हालांकि वो बिल्कुल इस किस्म के नहीं थे। उनका वो बाहर बहुत कमाल ही है, लेकिन अपनी शहरियत हिंदुस्तानी रखी। ये मुझे उनकी बहुत इज्जत है। इस
वक्त
खान साहब जो है वो, यानी हिंदुस्तानी तो थे वो, कभी उन्होंने कनाडा में उनके बच्चे पैदा हुए, वहाँ के भी ले सकते थे, अमेरिका में ले सकते थे, इंग्लैंड में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की और ख़ास तौर पर हैदराबाद। हम तो लेडी होने की तरफ से खानगी इम्तिहान दे के पास हो गए BA। उसके बाद बोले आपको एडमिशन नहीं देते, तो एडमिशन नहीं देते तो हमारे खान साहब जो है केस लड़े, तो खान साहब ने 6 कोर्सेस में एडमिशन लिया, तो उसमें हम भी आ गए, तो हमारे को भी एडमिशन मिल गया।
MA
मिल गया, MA उर्दू से मिल गया।
फिर उसके बाद, फिर
उर्दू से MA किया, उसके बाद आदिलाबाद में नौकरी की,
गवर्नमेंट
कॉलेज में
पढ़ाया।
अरे एक वो पब्लिक सर्विस कमीशन से गए, तो उसके बाद में जो है उर्दू वहाँ से MA गए, तो वहाँ हमारे साथियाँ थे, कुछ मुस्लिम भी थे हिंदू भी थे, हम अकेले रहते थे एक बिल्डिंग में। वो बिल्डिंग में जो है ये मशहूर था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है, तो हमने सोचा कि मिल जाएंगे दोनों बहना बहना। तो खैर वो मुझे कभी बेचारी आई नहीं, मिली नहीं मुझसे, मैं साल भर वहाँ रही। उसके बाद मेरे दोस्तों ने कहा कि चलिए साहब हम लोग जो है आदिलाबाद बहुत खूबसूरत जगह है, यानी जंगल, अब पता नहीं क्या काट लिए, लेकिन हम लोग कुंताला वाटरफॉल जाते थे, वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी की जीप थी, वो ड्राइवर को हम संडे बात कर लेते थे, पैसे पेट्रोल डाल देते, तेरे को 10 रुपये देते, और 10 रुपये की बहुत कीमत थी, तो वो लेके हम आदिलाबाद में घूमते। तो बासर में जो है वो सरस्वती का मंदिर है। हैदराबाद इंडिया में 2 मंदिर हैं सरस्वती के, एक बासर में है, एक मैहर में है। मैहर के मंदिर में वो उस्ताद अलाउद्दीन खां वहाँ रोज एक सांस बजाकर सरस्वती को उठाते थे, और उसके बाद अकबर अली खां
आदिलाबाद में है।
नहीं, ये मैहर मध्य प्रदेश में है, और अब जो है आशीष खां वहाँ रहते हैं, वो सरस्वती को उठाते हैं। उनकी वालदा जो है रविशंकर की बहन है। ये तो दूसरी स्टोरी हो गई, मगर यहाँ बासर गए हम वहाँ पर, तो किसी ने हमसे पूछा, मुस्लिम दोस्त ने, कि साहब ये मूर्ति क्या है? तो मैंने उनको बताया कि हिंदुस्तान में मूर्ति थी नहीं पहले, मूर्ति पहले जो है बुद्धों ने बनाई, क्योंकि महात्मा बुद्ध को उन्होंने 30 गुण बताए थे अच्छे आदमी में, उस गुण के हिसाब से मूर्ति बनाई, और पहली मूर्ति सरस्वती की बनी जो बिंदुसार ने बनाई, और वो लाहौर में है, और आज भी लाहौर में बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो अब ये मूर्ति बनाने के वास्ते लोगों ने उसमें फिलॉसफी भी डाली। कैसी फिलॉसफी? कि वो मूर्ति जो है ब्रह्मा की, सरस्वती जो है वो ब्रह्मा की वो है, बीवी है। तो ब्रह्मा जो है क्रिएटर है, और जब क्रिएट करते हैं तो नॉलेज की ज़रूरत है, तो सरस्वती नॉलेज की है और उसमें रिथम होना चाहिए। वो सितार पकड़ी हुई है और उनके हाथ में एक माला है, तस्वी है, और दूसरे हाथ में जो है खलम है। तो ये चीज़ जो है, देखिए ये फिलॉसफी है कि आप एजुकेशन के लिए। उसके बाद फिर गणेश भी बन गए। गणेश जो है साइंस का देवता बना, उनकी भी पैदाइश फिर बसंत पंचमी को ही हुई। आप पुणे और महाराष्ट्र में जाएंगे तो गणेश और सरस्वती की एक ही दिन करते हैं पूजा।
अभी हाँ, आप आदिलाबाद में अच्छा घूम लिए, अच्छा काम कर लिए, वहां से दिल्ली कब का कैसा पहुंचे?
दिल्ली नहीं आई, वहां से सालार जंग म्यूजियम आई। वो यही बता रही थी मैं आपको कि जब मैंने बताया कि ये मूर्तियों का आइकोनोग्राफी क्या होती है, तो उस वक्त पर वो पीछे सालार जंग म्यूजियम के डायरेक्टर साहब खड़े सुन रहे थे। उन्होंने समझा कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो लिहाजा उन्होंने पूछा कि आप सालार जंग में नौकरी करेंगे, तो मैंने कहा कि आप दीजिए मैं आ जाऊँ।
ये कौन सा पुराना सालार जंग है, अभी का नया बिल्डिंग जो है?
पुराना सालार जंग,
वो जो सालार जंग के घर के अंदर जो था, वो उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं क्या?
बहुत बताती हूँ मैं आपके उसके बारे में। वो सालार जंग की देवड़ी थी, सालार जंग फर्स्ट, बल्कि वो सालार जंग के दादा के जमाने से थे, मुनीरुल मुल्क के जमाने। तो वो देवड़ी को सालार जंग, उसमें जो है वो वी डी कृष्णस्वामी थे वो, और वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने जब ये मुझे लगा कि आइकोनोग्राफी जानते हैं, तो समझे कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, गलतफहमी। तो मुझे कहा गया, तो मैंने कहा अच्छा नौकरी दे दो तो आ जाऊँगी। तो उन्होंने आते कब, पहला काम उन्होंने ये किया हैदराबाद आके मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर भेजा।
क्या अपॉइंटमेंट?
गाइड लेक्चरर का अपॉइंटमेंट ऑर्डर भेजा। तो मैंने कहा कि साहब ये फरवरी का महीना है, मैं मार्च के बाद आऊँगी, मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम दे लें तब मैं जाऊँगी। फिर मैं मार्च का एग्जाम होने के बाद अप्रैल में आके,
कौन सा साल
ये था, 1968, यहाँ आकर ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद वो साहब ने हमको इतना पढ़ाया इतना पढ़ाया इतना पढ़ाया कि हम जो है भूल गए उर्दू क्या होती है, क्योंकि इन्हें पेंटिंग क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, स्टोन्स क्या होते हैं, ब्रश क्या होता है, ये सब उन्होंने हमको ट्रेन किया। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, फिर पेंटिंग क्या होती है, बहरहाल पूरी तरह से। तो हम जो है अपने ज़माने के नामवर गाइड लेक्चरर हो गए थे। तो एम्बेसीज वाले हमको लिखते थे कि साहब फलां को भेजिए, फलां रखिए ताकि वो हमको गाइड करें। तो हमारे हम
अब उसमें में एक डाउट है, अभी आप जब वो पुराने सालार जंग में जब काम करते थे, जब बहुत बड़ा था क्या घर उनका, जब हो रहे
देवड़ी बहुत बड़ी देवड़ी थी, आप देवड़ियों का अंदाजा मत लगाइए। देवड़ी अपनी जगह एक शहर था, वहाँ हर देवड़ी एक शहर था। ये जो देवड़ी थी जिसका इसमें जो है आपको जनाना खाना अलग था, मर्दाना अलग था, फिर उसके बाद में नौकरों के लिए अलग, फिर खान साहब अलग, दारोगा साहब अलग रहते थे, शागिर्द पेशा अलग रहते थे, वो ये पूरा जो है एक अपनी जगह रहता था।
फिर वो वहाँ पर एक कांच एक रूम था करते ना, वहाँ पर पूरा कांच की चीज़ें, वहाँ पर क्या बोलते वो ग्लास रूम बोल के कोई बोलते था। वो क्या था, वो आईना खाना क्या था?
आईने खाने में क्या होता था, वो आईने खाने में बैठक होती थी, मुशायरे होते थे। तो वो आईने खाना आप मुग़ल आज़म में नहीं देखे, आईने खाना जो नाश्ती है वो वहीं का है वो।
अच्छा वहाँ का है वो,
खास तौर पे परमिशन।
आप 68 में वहाँ पर गए, फिर असल ये उनका देवड़ी जो है कब वहाँ से कब हटाया, फिर क्या हुआ था असल में, देवड़ी से क्यों हटाया वहाँ से?
देवड़ी हटाया बेवकूफों की वजह
नहीं, मतलब क्यों, क्या हुआ असल में, क्यों हट गया?
नहीं नहीं, ये जो वी डी कृष्णस्वामी साहब थे ये बहुत ऑनेस्ट आदमी थे, ये चाहते थे कि उस देवड़ी को ही म्यूजियम के तौर पर रखा जाए। लेकिन अब देखिए जनाब, पैसे के लिए आदमी कुछ भी करता है। तो तमाम लोगों ने क्या किया था कि 57 में सालार जंग का पूरा हिस्सा बनाया गया था, क्या है तो एक रुपया उनकी पूरी जायदाद को तय किया गया था।
हाँ, एक रुपया
है पूरी जायदाद।
अच्छा,
समझा?
हाँ, हाँ।
उसमें से आठ आने इनको मिलेंगे, चार आने इनको मिलेंगे, एक नया पैसा इनको मिलेगा, आधा नया पैसा इनको मिलेगा। तो वो जो रिश्तेदार थे अकॉर्डिंग शरई तौर पर उसमें थे, तो उसमें दो उनके फूफीजाद भाई थे जिनको आठ आने मिला। आठाने मिलने का, आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिस साहब को वो हमारे यहाँ चौकीदार के तौर पे इंतकाल हुआ उनका, उनको मिले थे एक पैसा और वो थे 92,057। अब आप उसका हिसाब लगा लीजिए, वो आप इकोनॉमिक्स उसमें पढ़ लीजिए। तो खैर इन लोगों ने सब
ये कब की बात है,
ये 70s में पूरा हिसाब किताब पूरा हो गया। और ये नहीं, पूरे जो चीजें बहुत थे उनका हर राज हुआ, ये जमीनात उनके बिके, सालार जंग के सब कुछ होके
तो उसमें घर भी चलेगा फिर वो।
अब वो देवड़ी को लिए कोशिश करते रहे बेचारे, लेकिन जो उनके अराकीन खानदान थे वो तैयार नहीं हुए। वो लक्कड़कोट के लिए भी कोशिश करते रहे,
लेकिन
बारादरी थी बस। अब जो म्यूजियम बना है वो लक्कड़कोट था
नहीं, लेकिन जो म्यूजियम जो घर देवड़ी में थी, जब वहां पर जब लोग रहते थे क्या, जब वहां पर
नहीं उनके कोई रिश्तेदार नहीं रहते थे।
फिर वो आर्कियोलॉजी नहीं, वो आर्कियोलॉजी के कंट्रोल में थी वो।
नहीं, वो जो है उसका अपना खास तौर पे उसका अपना वो था, पार्लियामेंट एक्ट था उसका।
फिर कैसा आ गया फिर हाथ से,
मैं बताती हूँ। हुआ ये कि 1952 में जवाहरलाल नेहरू हैदराबाद आए थे
जी,
तो उन्होंने ये देवड़ी उनको बताई गई थी
राइट।
जब तक सालार जंग का इंतकाल हो चुका था, सालार जंग 1949 में मर गए
जी।
तो ये देवड़ी का जो उनके थे तमाम नौकर चाकर और कुछ रिश्तेदार मिलके उस देवड़ी को जैसी की वैसी कुछ नहीं, तो साला उनको नेहरू को बताए, तो नेहरू ने कहा कि इसको म्यूजियम बना देंगे। तो 52 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, पार्लियामेंट आ गई थी, तो कहा कि दिल्ली लेके जाऊंगा मैं। तो जयसूर्या साहब, राजबहादुर गौड़ साहब जो हैदराबाद के एमपीस थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये म्यूजियम जो जाएगा तो मूसा नदी के उस पार नहीं जा सकता। तो आप सोचिए कितना, इन्हें दिल्ली जाना तो बहुत दूर है, मूसा नदी क्रॉस नहीं करेगा। तो उसके बाद एक्ट बनाकर ये तय किया गया कि ये म्यूजियम नेशनल म्यूजियम हो जाएगा, तो यहीं पर ही होगा, नेशनल म्यूजियम के तौर पे इसको बनाया जाएगा। और वो नेशनल म्यूजियम 58 तक तो वो लोग अपने तौर पे उसको टिकट लगा के करके रहे, 58 में ये नेशनलाइज हो गया।
तो फिर जब बोल दो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई पूरी वो
58 में,
लेकिन फिर देवड़ी कैसा गया फिर हाथ से, फिर वो
देवड़ी नहीं आई ना,
हाजा खाली म्यूज खाली
म्यूजियम के एग्जीबिट आए, उसका एक पूरा इन्वेंट्री बनाई गई कि ये रखा जाएगा। एक वेंकटाचलम साहब थे जो आर्ट वो थे, डीलर थे, आर्ट क्या बोलेंगे आप, एक्सपर्ट थे, उन्होंने उसको ये रखना है ये नहीं रखना है ये बनाया गया, पूरा बनाकर एक डायरेक्टर बनाया गया यहाँ पर।
लेकिन फिर भी मतलब आप भी जो बोल रहे सो म्यूज देवड़ी कभी प्रॉपर्टी नहीं आई, खाली एग्जिबिट्स आए, तो फिर लेकिन इतने सालों तक देवड़ी में कैसा रखे फिर
वो देवड़ी में रखे ये कि हासिल करेंगे देवड़ी।
अच्छा, लेकिन
ये वी डी कृष्णस्वामी साहब कोशिश में रहे, 68-70 में बेचारे रिटायर भी होने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। तो ये तय हुआ कि लक्कड़कोट की जो जमीन है, लक्कड़कोट बेच लिए, लक्कड़कोट की जो जमीन है उसके ऊपर हम ये जमीन दे देंगे आपको, आप हमको ये देवड़ी दे देना। तो देवड़ी दे दी गई उनको। अब वो देवड़ी की दीवारें, वहां पर देवड़ी का प्रॉब्लम जो होता है ना पुराने शहर के, वो तमाम मिट्टी का कंस्ट्रक्शन है।
हाँ।
मिट्टी का कंस्ट्रक्शन होने की वजह से
टोटल मिट्टी है।
तो अब वो उसका मेंटेनेंस कैसा होगा, उसको किस तरह से, यानी बहुत बड़ा मेंटेनेंस होता है। तो वो सोची थे इसमें ये तय हो गया, फिर पार्लियामेंट में ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ये गए, बहरहाल अपना हिस्सा अपने दाल पे रोटी ले लिए। और उसके बाद वो एग्जिबिट शिफ्ट होना शुरू हुए। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने पूरे 3 महीने में किया, क्योंकि उसमें ये था कि अदालत का ये था कि 3 महीने के अंदर अगर एग्जिबिट इसमें रह गए तो वो वारिसों के होंगे।
तो लेकिन आखिरकार वो जो देवड़ी थी वो किसके हाथ कंट्रोल में थी लास्ट में, वो
नाम बोले
नहीं, नाम नहीं, बस खाली उनके फैमिली में थी वो,
उनकी सालार जंग की फैमिली में।
और अब चले गए, जो पूरा बेच दिया पूरा, उसके बाद फिर क्या हुआ गया, फिर
जो लोग उनके वकील थे वो लोग खा गए।
तो अभी तो फिलहाल तो कुछ बाकी तो नहीं है अंदर, ये देवड़ी कब साफ हो गया वहां से, वो
पूरा साफ हो गया मेरा ख्याल है, जितने जल्दी हो सका उतने जल्दी तोड़ लिए वो लोग, मुझे ठीक से मालूम नहीं। लेकिन हम लोगों ने 3 महीने में एक एक चीज, इतनी छोटी सी कौड़ी थी तो वो भी शिफ्ट कर ली थी। और हत्ता के आईने खाने के जो बड़े बड़े शीशे थे उसको भी ले लिया हमने, छोटे छोटे नहीं ला सकते थे तो बड़े शीशे, हालांकि उन पर इन्वेंट्री नहीं थी लेकिन ला लिए हम, बोले कि उसके बाद ला लिया, रख दिए पूरा यहाँ पर तीन।
अब मेरे को और एक डाउट है अभी, अब ये तो सलार जंगा हो गया, चार मीनार के ओल्ड सिटी में वो जो मेन एरिया जो चार मीनार के अतराफ का जो एरिया है, 1960s के टाइम तक वहाँ पर क्या पॉलिटिक्स थी, वहाँ पर कौन से पार्टीज ताकतवर थे, और 80s में क्या शिफ्ट हुआ ये वहाँ पर मजलिस और बीजेपी का, आप उससे कुछ कनेक्शन है क्या मंदिर का पॉलिटिक्स का?
1957 में कासिम रिजवी को हैदराबाद से भेज दिया गया, पाकिस्तान चले गए। उस वक्त पर दारुस्सलाम की जायदाद का मुकदमा था,
बराबर।
वो मुकदमे में जो है दारुस्सलाम के जो वो मजलिस को दिया था, कासिम रिजवी की जायदाद थी वो, लेकिन मजलिस वालों ने ये किया कि वो जायदाद अपने नाम मुंतकिल कर ली,
ठीक है, वो तो खैर वो तो
हो गया। उसके बाद जो है ये तय पाया कि यहाँ बाएं बाजू को मात करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू जो एजुकेटेड थे मिडिल क्लास हिंदू भी वो बाएं बाजू के साथ, और यहाँ से पूरे इलेक्शन में जो म्यूनसिपालिटी इलेक्शन होते थे उसमें हमेशा PDF आता था,
पीपल्स डेमोक्रेटिक
फ्रंट था, ये सब लेफ्टिस्ट थे। तो उसमें कॉमरेड नज़ीर अहमद साहब थे जो पेटला ब्रुज से आते थे, खालिस मारवाड़ियों का इलाका था वहाँ, उसमें से वो आते थे नज़ीर अहमद साहब, उनको वो कभी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे लेकिन उनको कॉमरेड नज़ीर अहमद कहा जाता था। तो वो साहब एक वोट से हारे वहाँ पर,
अच्छा,
क्योंकि अंदरूनी तौर पर गवर्नमेंट और मजलिस ने ये तय किया था कि किसी सूरत मुसलमानों को जो है ये बताया जाए कि ये तुम्हारी मुल्कियत है, हालांकि बहरहाल जो भी था वो
तो ठीक है, नहीं लेकिन ये पूछने का मतलब ये है कि
ये हो गया कि थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद टूटा, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत टूटा, ये इतना नहीं हुआ कि लोग एक दूसरे को देख के मारपीट कर ले, इतना नहीं, लेकिन ये हुआ कि कुछ तो जरब लगी उस पर। और उसके बाद क्योंकि सबसे बड़ी चीज की जो बाएं बाजू ने इकट्ठा कर रखा था वो टूट गया।
लेकिन ये मंदिर बने बाद जब क्या हो गया पॉलिटिक्स में वहां पर,
वही वही पॉलिटिक्स हुई ना, बाएं बाजू वाले गए बोले कि ये मंदिर नहीं है, तो मुसलमान तो चुप रहे, हिंदू बोले मंदिर है, अब क्या कर लेते आप। अब आप सोचिए शिवलिंग को भी जो है गाय का मुंह है बोले तो क्या बोल सकते, कोई शिवलिंग गाय के मुंह का नहीं रहता, लिंग इज लिंग इज नॉट इन एनी। अब आप देख रहे हैं आज की हालात में, उसी वक्त पर ये जो चलो ठीक है, अब ये हो गया था जहाँ चलने दो क्या करते, तो चलने दो में हम मार खाते गए। ओ, फिर उसके बाद तो ये
मंदिर का पॉलिटिक्स जो है अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जब के टाइम पे हमारे क्या बोलते अब क्या कैसा बोलना, कांग्रेस बीजेपी या मजलिस के बीच में
देखिए
कुछ था क्या? जब
था कुछ नहीं, मिसेस गांधी लोग बोलते इमरजेंसी करके जो है उन्होंने नुकसान पहुंचाया, मैं बोलती हूँ इमरजेंसी नहीं, नेहरू ने जिस तरह से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रखा, नेहरू ने मिसेस गांधी ने अपोजिशन को धक्का दिया, उसके नतीजे में ये आज हम ये भुगत रहे, क्योंकि कांग्रेस में जो मेंटालिटी रखते थे वो सीधे सीधे चले गए, वो चले गए उधर, जैसे आज जा रहे हैं शिवसेना वाले लड़ रहे हैं उसी तरह वो चले गए उधर। बेसिक बात मेरे को जो समझ में आती वो ये है कि हिंदुस्तान में पूरी तरह से एजुकेशन नहीं हुआ था और हम आज़ाद हो गए। उसके बाद जो मैंने मौलाना आज़ाद हमारे पहले तालीम के वज़ीर थे उनको लंबी हयात नहीं मिली, बाल गंगाधर तिलक तो पहले ही गुजर गए, ये दो आदमी बड़े सेक्युलर थे, और अगर बाल गंगाधर तिलक साहब जिंदा होते तो शायद जिना साहब पाकिस्तान बनने नहीं देते थे, यानी इतना उनका इन्फ्लुएंस था बाल गंगाधर तिलक पर और बाल गंगाधर तिलक पर जिना का, बहुत दोनों का याराना था। उन्होंने जिना साहब ने बाल गंगाधर तिलक को वहाँ से निकाला ना, अंडमान निकोबार से निकाल के लाया। तो ये सब चीज़ें जो है अब हमारे हम अगर तारीख को पलट के देखते जाते हैं तो ये हो जाता है। अब अगर हमको कुछ करना है आज के दिन में तो हम कोई नया मंदिर बनाने नहीं देना चाहिए, न मंदिर बनेगा न छिल्ले बनेंगे न मस्जिद बने, जो है उसकी हिफाजत करेंगे बस। और ऐसे भी जो जब दिल में आ जब बना लिए उनको भी रोक देना, खत्म करना चाहिए, क्योंकि आप लड़ने का अगर है तो सिकंदराबाद में दो है ना, बाजू बाजू है,
हाँ, मस्जिद है,
हाँ गोलकुंडे में मंदिर मस्जिद बाजू बाजू है,
सिकंदराबाद में किनकी उसमें है ना,
स्टेशन रोड पे से जाते
हैं, हाँ, बराबर ठीक है, ये तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड ऑफ बियॉन्ड चारमीनार। यू कैन लिसन टू मोर एपिसोड्स ऑन आवर वेबसाइट sunoindia.in और ऑन एनी अदर पॉडकास्ट ऐप ऑफ योर चॉइस।